अपनी इस लाइफ के जर्नी को जॉयफुल कैसे बनाना है और फॉरगिवनेस के साथ इस विषय को स्पष्ट करने के लिए हमारे बीच उपस्थित है हमारे विशेष प्रबुद्ध वक्ता भ्राता ओंकार चंद जी। आकाश में सितारे तो बहुत है, परंतु कुछ सितारे ऐसे होते हैं जिनकी अपने आप में एक विशेष चमक होती है। तो ऐसे ही एक चमकते हुए सितारे हैं हमारे भ्राता ब्रह्मा कुमार ओंकार चंद जी। प्रोफेसर ओंकार चंद जी एक कुशल इंजीनियर, राजयोगी, विश्व प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर है। आप ब्रह्मा कुमारी संस्था के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू में सेवारत है। आपने बीटेक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र से किया है और एमटेक चंडीगढ़ से किया। आपने अपना संपूर्ण समय और जीवन मानव के कल्याणार्थ सफल करने के लक्ष्य को लेकर चंडीगढ़ में 2014 में इंजीनियरिंग कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पद से रिजाइन देकर ब्रह्मा कुमारी संस्था में समर्पित होकर अपनी सेवाएं देने लग गए। आप पीस ऑफ माइंड टीवी, लिविंग इंडिया टीवी सहित अनेक चैनल्स में प्रसारित होने वाले टॉक शो जैसे कि जिंदगी बने आसान, इस एपिसोड के मुख्य वक्ता रहे हैं। आपने देश विदेश में अपनी सेवाएं दी है। आप विशेष रूप से हार्मनी इन रिलेशनशिप, एंगर मैनेजमेंट, पॉजिटिव थिंकिंग, माइंड मैनेजमेंट ऐसे अनेक इश्यू पर आपका कमांड है और आप इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के समाज सेवा प्रभाग के इस प्रोजेक्ट के मुख्य संयोजक है। आप इंडियन सोसाइटी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के लाइफ मेंबर और राजयोगा एजुकेशन व रिसर्च फाउंडेशन के समाज सेवा प्रभाग के एग्जीक्यूटिव मेंबर है। तो ऐसी विशेष हस्ती हम सबके बीच मौजूद है। इस अपने ज्ञान के प्रकाश से इस विश्व वसुंधरा को प्रकाशित करने वाले, इस विश्व में शांति की क्रांति लाने वाले ऐसे महान प्रबुद्ध वक्ता आप हैं। तो अब हम भ्राता ओंकार चंद जी से सुनेंगे। आप सभी कर्तक ध्वनि से आदरणीय भ्राता जी का स्वागत करेंगे। आदरणीय भ्राता ओंकार चंद जी,
सभी प्यार से कहेंगे ओम शांति, सभी दिल से कहेंगे ओम शांति, एक बार मुस्कुरा के कहिए ओम शांति। आज के इस लेक्चर सेशन के हमारे विशेष अतिथि मंच पर विराजमान लायन उत्पल कुमार जी, जो चेयरमैन हैं लायंस इंटरनेशनल के, बॉम्बे से पधारे हैं। मंच की संचालिका बहन सरिता जी, जो दिल्ली से पधारी हैं, और हॉल में विराजमान आप सभी समाजसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर हम बात करने वाले हैं, और वो विषय है कि कैसे हम दूसरों को माफ करें। क्या हम क्षमा दान कर सकते हैं? क्या क्षमा करना आसान है? क्या क्षमा करना हमारे फायदे में है? क्यों जरूरी है दूसरे को माफ करना? आज तक दूसरों के लिए मन में कई तरह की भावनाएं हम लेके चलते रहे, नफरत की, गुस्से की, ईर्ष्या की, द्वेष की, कई तरह की फीलिंग्स मन में चलती रहती हैं। लेकिन क्या हम इस जीवन रूपी यात्रा को आसान बना सकते हैं? क्या जीवन रूपी यात्रा का हम आनंद ले सकते हैं? अपने संबंधों को मधुर बना सकते हैं? अगर हम बनाने के लिए तैयार हैं तो दो चीजें हमें याद रखनी पड़ेंगी। अगर मन में नफरत है, मन में बदले की भावना है किसी के लिए, मन में गुस्सा है जिसने आपके साथ गलत किया, अन्याय किया, अत्याचार किया, दिल से उसे माफ कर दो। और दूसरा है, आपकी वजह से किसी को दुख पहुंचा हो, आपकी वजह से किसी को परेशानी मिली हो, सच्चे दिल से दोनों हाथ जोड़कर उससे माफी मांग लो, तो ये जीवन रूपी यात्रा बहुत आसान हो सकती है। जीवन रूपी यात्रा में बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि हम पास्ट की जो चीजें हैं उन्हें भूल नहीं पाते। पास्ट भूतकाल की चीजें भूत बनकर हमें परेशान करती रहती हैं। कहते हैं जो भूतकाल होता है, यहां भी लिखा हुआ है कि हम अतीत के गुलाम नहीं बल्कि भविष्य के निर्माता बने। हम पास्ट की बातों से छुटकारा नहीं पा लेते। बार बार वही बातें तंग करती रहती हैं। बात को हुए कई साल बीत गए लेकिन हमें याद आता रहता है, फला व्यक्ति ने फला जगह मुझे साथ ऐसे व्यवहार किया, मेरा अपमान किया, मुझे ये कहा, मेरे साथ ऐसा किया। वो बातें याद आती रहती हैं और वो भूलती नहीं है। मन रूपी कागज पे जो बात लिखी गई उसे मिटाया कैसे जाए? स्लेट पे कोई बात लिखी हो उसको मिटा सकते हैं, मन रूपी कागज से बात को कैसे मिटाएं? सिंपल कागज पे आपने कोई लाइन खींची, इरेजर से, रबड़ से आप उसको मिटा सकते हैं, लेकिन मन रूपी कागज में जो चीज पक्की अंकित हो जाती है उसको कैसे मिटाया जाए, सोचने का विषय है। अगर आपके शरीर में कोई कांटा लग जाए उसको भी निकाला जा सकता है, आपके शरीर में कोई गोली लग जाए सर्जरी करके डॉक्टर्स उसको भी निकाल लेते हैं, लेकिन मन में कोई बात चली जाए, अगर मन में अगर कोई बात बैठ जाए, दूसरे की कष्टदायी बात, उसको कैसे मिटाएं, मन को कैसे ठीक करें? क्योंकि मन में जो बैठ गया वो बार बार याद आता रहता है, और जितनी बार आप उसको याद करेंगे उतनी बार ही आप अपने आप को सजा देते रहेंगे, उतनी बार आप परेशान रहेंगे। वो जो दर्द वो बात हमें देती है, जो हर्ट हम वहां से होते हैं, वो हमें हमारे साथ चिपका रहता है। वो दर्द के साथ हम चिपके रहना चाहते हैं, उसे छोड़ना ही नहीं चाहते। तो जो दुखद अतीत है, जो वो दर्द की बातें हैं, उनको भूलने का सबसे आसान तरीका है, फर्स्ट तरीका यहां बता रखा है कि आप उसको फॉरगिव कर दो, क्षमा कर दो, माफ कर दो, जाने दो, लेट गो कर दो। आप ये सोचो कोई बात नहीं, हम झंझट मोल नहीं लेंगे, हम परेशान नहीं होंगे, हम उसको जाने देंगे, माफ कर दो। कैसी माफी मिलती है नेक्स्ट स्लाइड्स में हम उसकी बात करेंगे, लेकिन उससे बाद दूसरा पॉइंट इसके ऊपर है कि माफ करने के लिए 4-5 स्टेप्स हैं जो यहां स्लाइड्स में आपको दिखाए जा रहे थे। पहला तो है कि दूसरे को माफ कर दीजिए, कि आप फॉरगिव एंड फॉरगेट। फॉरगेट करने का बेस्ट वे है कि आप उसे क्या कर दीजिए, माफ कर दीजिए। सेकंड वे टू फॉरगेट द थिंग्स, डाइवर्ट द अटेंशन, कि आप ध्यान वहां से कहीं दूसरी जगह लगा दो। तीसरा है आप सोचो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। और चौथा है कि आप जो ओल्ड मेमोरीज हैं उनको नई मेमोरीज के साथ रिप्लेस कर दो। और पांचवा है कार्मिक अकाउंट, कि हम सोचें कि हमारे कार्मिक अकाउंट सेटल हो रहे हैं। इनके ऊपर एक एक के ऊपर चर्चा करेंगे, बात करेंगे कैसे पास्ट से हम मुक्त हो सकें। नंबर वन वे इज फॉरगिव, माफ कर दो, दूसरे को क्षमा दान दे दो। अगर कोई और दान नहीं दे सकते तो कम से कम क्षमा दान तो दिया ही जा सकता है। हमने दूसरों को इसलिए माफ नहीं करना है कि वो माफी के अधिकारी हैं, हमने दूसरों को माफ इसलिए करना है क्योंकि हमें शांति चाहिए, हम शांति के अधिकारी हैं। शांत रहने का इससे बड़ा उपाय कोई नहीं है, अपने मन को ठीक करने का, अपसेट से उसको खुशी में लाने का तरीका है कि आप दूसरे को माफ कर दीजिए। आप माफ दूसरों को नहीं कर रहे, एक्चुअल में ये परोपकार, ये अच्छी चीज आप अपने लिए कर रहे हैं, ये किसी दूसरे के ऊपर एहसान नहीं है। परमात्मा ने हमें इस दुनिया में भेजा, अनेक अच्छाइयों के साथ भेजा, अनेक गुड क्वालिटीज के साथ भेजा, अनेक वैल्यूज के साथ हमें भेजा, और उनमें से एक वैल्यू है, एक अच्छाई है, दूसरे को क्षमा करना। ये बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ा परोपकार का काम आप करते हैं अगर आप दूसरे को उसकी गलती के लिए, उसकी भूल के लिए माफ कर लेते हैं, और माफ भी कोई मजबूरी में नहीं, खुशी खुशी से, खुशी खुशी से अगर दूसरे को माफ करते हैं तो आप उसकी भी मदद करते हैं, आप अपनी भी मदद करते हैं। क्या होता अगर बचपन में आपके माता पिता आपको आपकी गलतियों के लिए माफ नहीं करते? क्या होता अगर ईश्वर आपके हर अपराध के लिए आपको तुरंत सजा दे देता? जरा सोचिए तो सही, कितनी भयंकर सजा है। हम दूसरों को देने के लिए तैयार हो जाते हैं, हमें, हम खुद जज बनकर, खुद धर्मराज बनकर दूसरे के गुनाहों का हिसाब किताब तुरंत करना चाहते हैं। हम कोई अथॉरिटी नहीं है, सत्ता नहीं है हमारे पास, हमें ये काम नहीं दिया गया है कि हम दूसरों का हिसाब किताब करके उन्हें सजा देने, पनिशमेंट करने लग जाएं। तो हमें दूसरों को माफ करना है। क्षमा वीरों का भूषण है, कमजोर व्यक्ति कभी माफ नहीं करता। जो वीर पुरुष है वही दूसरे को माफ कर सकते हैं। इसलिए तो कहा है, क्या कहा है, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। कहा रहीम हरि का घटियो जब भृगु मारी लात। बड़ा व्यक्ति वो है जो क्षमा करता है। गलतियां छोटों से होती हैं, उन्हें छोटा समझ के माफ कर देना चाहिए, और ये आपका बड़प्पन है अगर आप दूसरे की गलतियों को माफ कर देते हैं। जो भृगु महाराज थे, उन्होंने विष्णु के पास जाके उनके वक्ष पे लात मारी उनकी सहनशीलता की परीक्षा लेने के लिए, लेकिन विष्णु जी ने जरा भी गुस्सा नहीं किया और कहा बड़े नम्रता पूर्वक कि भृगु महाराज, मेरी छाती तो बड़ी मजबूत है, तुम्हारे पांव बड़े कमजोर मुलायम है, कहीं गलती से उन्हें चोट तो नहीं लग गई? तो बड़ा आदमी वो है, या जिसे बड़ा बनना है, उसे माफ करना तो आना ही चाहिए। माफ करना भाइयों और बहनों हमारे फायदे के लिए है, हमारे बेनिफिट के लिए है। ये बात अगर हमें समझ आ जाए तो माफ करना बड़ी बात नहीं है। नहीं तो लगता है इतना बड़ा काम, सुनने में अच्छा लगता है, बोलने में अच्छा लगता है, सॉरी कह दो, माफी मांग लो, लेकिन जब करते हैं, जब किसी ने आपके साथ बहुत गलत किया हो, उस व्यक्ति के लिए भी क्षमा भाव मन में रखना बहुत बड़ी बात है। और ये हो सकता है, क्योंकि कोई भी चीज इस दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है। गलतियां इंसान करते हैं, और जो माफ कर देते हैं वो डिवाइन कहलाते हैं, वही देवता हैं जो माफ करना जानते हैं। ऐसा कौन इंसान होगा जो गलती नहीं करता होगा? क्या हमसे गलतियां नहीं होती? क्या हमसे भूलें नहीं होती? जब हमसे भूल हो तो हम क्या सोचते हैं कि ईश्वर मेरी भूल के लिए मुझे माफ कर दे, और जब दूसरे से भूल हो तो हम डंडा लेके उसको सुधारने चल पड़ते हैं कि इसे तो सजा मिलनी ही चाहिए। अपने लिए कोई और पैमाना, दूसरे के लिए कोई और पैमाना, ये नहीं चल सकता। माफ करना अंधेरे कमरे में रोशनी करने जैसा है। जैसे कमरे में रोशनी हो जाए तो सब दिखता है। तो व्यक्ति जो माफ करता है और जो माफी पाता है, वो दोनों एक दूसरे को देख के एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं। इससे दोनों का बेनिफिट है, दोनों का भला है। माफ करना बहुत बड़ा गुण है, ये आपकी पर्सनैलिटी को चार चांद लगा सकता है अगर आप सीख जाएं दूसरे को माफ करना। क्योंकि जो गलतियां हुई वो पास्ट का हिस्सा है। क्या हम पास्ट को चेंज कर सकते हैं? क्या हम पास्ट को चेंज कर सकते हैं? यस और नो? नो। जब हम उसे चेंज ही नहीं कर सकते, उसे सबक ले सकते हैं कि ये हुआ, आगे के लिए ध्यान रखें। हम अपना भविष्य बना सकते हैं, भविष्य को सुनहरा बना सकते हैं, अगर हम सीख लें हमें अपने संबंध कैसे अच्छे रखने हैं। फॉरगिव अदर्स एज क्विकली एज यू एक्सपेक्ट गॉड टू फॉरगिव यू। जितनी जल्दी आप भगवान से अपनी माफी की उम्मीद रखते हैं, उतनी जल्दी ही आप दूसरों को भी माफ कर दिया करें। भगवान कहते हैं, आप रात को सोने से पहले सबको उनकी भूलों के लिए माफ कर दिया करो। मैं सवेरे उठने से पहले आपको आपकी भूलों के लिए माफ कर दिया करूंगा। है अच्छा सौदा है। अगर आप चाहते हैं भगवान हमें माफ करे, तो तरीका क्या है? आप दूसरों को माफ करना सीख जाइए। माफ करना बहुत बड़ा गुण है। एक नौजवान से मेरी मुलाकात हुई, वो नौजवान कहता, मुझे लोगों के प्रति बड़ा गुस्सा है मेरे मन में, मैं उन्हें माफ नहीं कर सकता, उन्होंने मेरा बहुत कुछ बिगाड़ा है। आप हमें माफ करने के लिए कहते हो, लेकिन मैं उन्हें माफ करना नहीं चाहता, ना ही मेरे पास माफ करने की ताकत है, मैं उनसे बदला लेना चाहता हूं। मैंने पूछा, 5-7 के नाम तो बताओ जिनसे आप बदला लेना चाहते हो। कहता, बचपन में मेरी मां ने मुझे प्यार नहीं दिया, उसने मुझे तंग किया, पिताजी ने मुझे डांट लगाई, स्कूल में गया तो टीचर ने मुझे मारा, उसके बाद शादी हुई तो बीवी भी मेरे ऊपर गुस्सा करती रही। मैंने कहा, ठीक है, समझ आ गई बात। मैंने कहा, आप उनसे बदला लेना चाहते हो, लेकिन बदला लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वो कहता, अपनी पूरी कहानी सुनाने लगा, जी इतने बदले के ख्याल चलते हैं कि मैं तो उसे टेंशन वाली चीज, टेंशन हो गई है मुझे, डिप्रेशन में चला गया हूं, दवाई भी ले रहा हूं और वो दवाई भी असर नहीं करती, रात दिन वही चिंता। हमने उसे कहा, भैया तुम्हें किसी को माफ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत है। वो भाई देखने लगा। मैं कह, मां कभी तंग नहीं करती, मां तो प्यार करती है। पिताजी ने अगर आपको डांट लगाई, आपको सुधारने के लिए लगाई, आपके टीचर ने आपको मारा, आपको पढ़ाने के लिए मारा। आप ये ख्याल मन से निकाल दो कि ये सब मेरे शत्रु हैं। आपको नींद नहीं आती, आपको डिप्रेशन हो गई है, दवाइयों का असर नहीं होता है, इसका कारण ये है कि आपने पूर्व जन्म में बहुत लोगों को कष्ट दिया है और उनकी नेगेटिव एनर्जी आप तक पहुंच रही है और आपको इस स्थिति में ले आई है कि आपको हर व्यक्ति अब अपना दुश्मन नजर आ रहा है। अब उससे अगर बचना है, उस नेगेटिव एनर्जी का आपके ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े, तो तरीका है, सच्चे दिल से उनसे माफी मांग लो। रात को सोने से पहले और सवेरे उठने से पहले, उठने के बाद दिल से उनसे माफी मांग लो कि मैंने जाने अनजाने जो आपको दुख दिया, मुझे माफ कर दो। हर व्यक्ति हमारा दोस्त है, कोई दुश्मन है ही नहीं, ये हमारी सोच है। हमने लगता है कि ये दुश्मन नहीं, सब अपने हैं, कोई पराया नहीं है। पूरी प्रकृति, पूरे जीव जंतु, पूरे ग्रह सब हमारे हैं। अगर आप मित्र भाव उनके प्रति रखेंगे तो वो मित्र की तरह आपसे व्यवहार करेंगे। बेचारे ग्रहों ने हमारा क्या बिगाड़ा है, हमने उनका क्या बिगाड़ा जो वो हमारा बिगाड़ेंगे। उनके लिए, हर चीज के लिए मित्र भाव अगर रखेंगे तो क्षमा करना आसान रहेगा। महात्मा गांधी ने भी कहा है, क्या कहा? कमजोर कभी किसी को माफ नहीं कर सकता, क्षमा करना ताकतवर का गुण है। जो अंदर से मजबूत है, जो घबराता नहीं है, जिसका माइंड सॉलिड है वही माफ कर सकता है। आम आदमी तो एकदम गुस्सा कर जाएगा, एकदम इरिटेट करेगा, एकदम लड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन जो अंदर से मजबूत है, अंदर से ताकतवर है, वही माफ कर सकता है। क्षमा करने वाला सजा देने वाले से बड़ा होता है, और किसी को माफ कर देना बदला लेने का सबसे मुश्किल तरीका है। अगर बदला लेना है ना, तो आए मुश्किल वाला तरीका अपना के देखिए। अगर जीवन में कुछ दान नहीं कर सकते तो कम से कम क्षमा दान तो कर ही दीजिए। लोग कहते हैं हमारे पास कुछ देने के लिए है ही नहीं, क्या दें? लेकिन बहुत कुछ है हमारे पास। एक बार एक राजा था, राजा जब बुजुर्ग हो गया तो एक महात्मा उनके पास आया, कहने लगा महाराज आपके पास बहुत पैसे हैं, धन दौलत है, क्यों नहीं प्रजा में बांट देते, बांट दो लोगों को, लोग खुश हो जाएंगे। राजा को बात पसंद आई, राजा ने कहा ठीक है मैं लोगों को दे दूंगा जो मेरे पास है। अनाउंसमेंट हो गई, हर रोज सवेरे 9 से 12 बजे तक राजा प्रजा को धन दौलत बांटेगा, जो मांगेगा उसको वो मिल जाएगा। लंबी लंबी लाइनें लगने लग गई, सब राजा के पास आते और राजा बड़ी खुशी से उनको देता, क्योंकि जब व्यक्ति देता है वो हमेशा ऊपर रहता है, देने वाला खुश होता है। देना अच्छी चीज है, लेना बोझ है। तो राजा देता था। एक महात्मा था, फकीर था, वो फकीर हर रोज लाइन में लगता था। जब उसका नंबर आता था, जब उसकी बारी आती थी, वो अपना नंबर दूसरे को देके दोबारा लाइन में लग जाता, फिर उसका नंबर आता था, फिर वो अपनी नंबर दूसरे को देके दोबारा लाइन में लग जाता था। वो सारा दिन ऐसा ही करता रहता था। अब धीरे धीरे सारे राज्य में खुशखबरी ये बात फैल गई कि एक ऐसा फकीर है जो अपनी बारी भी दूसरे को दे देता है, अपनी टर्न दूसरे को दे देता है। तो राजा तक बात पहुंची, राजा को लगा कि दान तो मैं कर रहा हूं, मशहूरी फकीर की हो रही है, इतनी मशहूरी मेरी नहीं हो रही है, इतनी फकीर की हो गई है। उसने उस फकीर को बुलाया कि भाई बात क्या है, तुम बार बार क्यों लाइन में लग जाते हो, तुम्हें जितना चाहिए एक बार ले लो, दो बार ले लो, जितना चाहिए लेके घर जाओ, बार बार लाइन में लग जाते हो, बात क्या है? तो उस फकीर ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। फकीर कहने लगा महाराज जब आप देते थे तो मैं आपको देखता था, आप बड़े खुश होते थे क्योंकि आप दे रहे होते थे। अब मैंने सोचा कि मैं क्या दूं, खुशी मुझे भी चाहिए, तो मेरे पास तो देने के लिए कुछ था नहीं, मेरे पास तो मेरा नंबर ही था, तो मैं अपना नंबर ही दे देता हूं। कहने का भाव है हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ देने के लिए तो होता है, और सबसे बड़ा देने वाली चीज है क्षमा दान, दूसरे को माफ कर दो। और माफ आप उसको नहीं कर रहे, एक्चुअल में आप अपने को कर रहे हो, क्योंकि शांति का इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है, अपने आप को सुखी करने का इससे बड़ा कोई तरीका नहीं है, ये आपका अपने ऊपर किया हुआ बहुत बड़ा एहसान है। जब दूसरा व्यक्ति आपको कुछ कहता है, आपका अपमान करता है, तो आपको बहुत बैड फीलिंग आती है, आप हर्ट फील करते हैं, दर्द की फीलिंग होती है ना, उस दर्द की फीलिंग से निकलने का क्या तरीका है, कैसे हम हर्ट को हैंडल करें? कई बार लोग ये प्रश्न भी पूछते हैं कि कोई बार बार आकर आपको कष्ट दे रहा है, आपको तकलीफ दे रहा है, तो आप उसे अगर माफ ही करते रहेंगे तो क्या वो ये नहीं सोचेगा कि इसमें कोई दम नहीं है? क्यों ना उस वक्त पलट कर उसको जवाब दिया जाए और उसको बता दिया जाए कि हम भी कम नहीं है। आता ना मन में विचार, मन में द्वंद होता है। देखो एक बड़ी अच्छी कहावत है कि मुक्त आकाश में आप कील नहीं गाड़ सकते, और गाड़ने के लिए, कील गाड़ने के लिए दीवार का होना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति आकाश में उड़ रहा है, खुला आकाश है, कील चाहे कितनी भी तीखी है, वो कील उस आकाश का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कील के लिए दीवार होना बहुत जरूरी है, और वो दीवार है आपकी ईगो की दीवार। जब आप ईगो में रहते हैं तभी तो हर्ट फील करते हैं, तभी तो आपको पीड़ा महसूस होती है। अगर आप सोच लें, दो तीन जीवन के प्रिंसिपल्स याद रख लें कि कॉज ऑफ माय पेन इज नॉट आउटसाइड, कोई दूसरा व्यक्ति, दूसरा इंसिडेंट, दूसरी सिचुएशन मुझे पेन नहीं दे सकती। बहुत बड़ा रॉन्ग बिलीफ है, हमें लगता है वो व्यक्ति ने मुझे तंग किया, उसने मुझे पेन दी, हर्ट किया। नहीं, कौन मुझे हर्ट कर रहा है? मैं खुद बार बार उसके बारे में सोच करके अपने आप को तंग कर रहा हूं। दूसरे ने जो कहना था कहा, दूसरे ने जो करना था किया, लेकिन उसके ऊपर आपने क्या सोचा वो आपको हर्ट कर रहा है। हर्ट करना हमारी परसेप्शन है, हो सकता है वो बात बिल्कुल छोटी हो, जो उसने किया वो इतना बड़ा काम भी ना हो, लेकिन हमारे अंदर ही टॉलरेंस पावर नहीं है, हमारा ही संस्कार परेशान होने का है, तो हम हर्ट हो जाएंगे। हमें लगता है कि ये व्यक्ति तो मुझे कुछ समझता ही नहीं है, ये व्यक्ति तो मुझे मानता ही नहीं है, मेरे साथ ही हर बार ऐसा हो रहा है, क्यों मुझे तंग किया जा रहा है। हम हर्ट हो जाते हैं। याद रखें, कोई भी व्यक्ति मुझे हर्ट नहीं कर सकता, मैं खुद ही अपना नुकसान खुद करता हूं बार बार उसके बारे में सोच करके। और जब हम हर्ट होते हैं तो फिर हमारे मन में कौन से विचार आते हैं? बदला लेने के विचार, रिवेंज की फीलिंग आती है कि अब इसके साथ स्कोर सेटल करना ही पड़ेगा, इसको मजा चखाना ही पड़ेगा, अब बराबरी करनी ही पड़ेगी, इस तरह के विचार। फिर हमें लगता है इसने जो मेरे साथ किया इसके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए, इसने हाथ उठाया तो मैं भी हाथ उठाऊंगा, इसने आंख फोड़ी मैं भी आंख फोड़ूंगा। लेकिन याद रखें, कभी भी बराबरी नहीं होती। क्वेश्चंस लास्ट में लेंगे। कभी भी बराबरी नहीं होती। आपने, हम सोचते हैं स्कोर बराबरी कर लेंगे, स्कोर सेटल कर देंगे, उसने एक किया हमने भी किया तो बंद हो जाएगा, वो और करेगा फिर हम और करेंगे। ये एक विशेष साइकिल है जो बढ़ता जाता है और हम उस दलदल में घुस जाते हैं जिसमें परेशानियां, लड़ाई झगड़े के अलावा कुछ नहीं होता। तरीका है लेट गो, जाने दो। हर बात को सीरियस नहीं लिया जाता, हर बात में परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हम बार बार अगर हर्ट हो रहे हैं, बदला लेने के विचार मन में रख रहे हैं, तो वो विक्टिम की फीलिंग हमें देता है, हम अपने आप को पीड़ित महसूस करते हैं। और वो विक्टिम की जो स्टेट है वो बार बार तंग करती है हमें, हमें बार बार लगता है मैं विक्टिम, मेरे साथ ऐसा हुआ, इसने मुझे ऐसा कहा। ये चीज बार बार जब होती है और बार बार हम उसको रिवाइंड करते रहते हैं मन में, तो उस सीन में हम दोबारा पहुंच जाते हैं जो आज से कई साल पहले हुआ है। किसी व्यक्ति को देखते ही आपके मन में विचार आने लगते हैं कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया, आता है ना, 10 साल पहले किया था, फिर हम कहते हैं ना मैं भूला हूं, ना भूलना चाहता हूं, ना भूलने की मेरी कोई प्लानिंग है, क्योंकि इसने किया ही मेरे साथ ऐसा। और उस दर्द में जाकर जैसे ही उसको मन में लाएंगे तो आप उस इंसिडेंट में दोबारा 10 साल पहले पहुंच जाएंगे। वो घटना एक बार हुई है, वो इंसिडेंट एक बार हुआ, लेकिन हम बार बार उसको रिवाइंड करके कितनी बार अपनी लाइफ में ला रहे हैं? अनेकों बार। जितनी बार याद करेंगे उतनी बार हम अपने को खुद पनिशमेंट देते हैं, खुद अपने आप को सजा दे रहे हैं। कई बार हमें लगता है कि दूसरे को सुधारना है तो उसे सजा तो देनी पड़ेगी, उसे गलती का एहसास कैसे होगा? लेकिन जिस व्यक्ति ने गलती की होती है ना, उसे खुद पता होता है कि मैंने गलत किया है। हमारी सजा देने से उसे एहसास हो या ना हो, उसे खुद पता होता है। हमें लगता है कि बच्चों को सुधारना या किसी को भी सुधारना है, पनिशमेंट दो सुधर जाएंगे। नहीं, पनिशमेंट एक नेगेटिव एनर्जी है। क्या किसी नेगेटिव एनर्जी से आप ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं? क्या बुराई से किसी अच्छाई को लाया जा सकता है? कभी भी नहीं। हम दूसरे से नफरत करने लग जाते हैं। सदा याद रखें कि उसका एक्शन में भी रॉन्ग, बट दैट पर्सन इज नॉट रॉन्ग. एक्शन इज डिफरेंट, पर्सन इज डिफरेंट, दोनों अलग अलग हैं. नफरत पापी से करो या पाप से? पापी से या पाप से? पाप से. जब हमसे गलती हो जाए, 1000 गलतियों के लिए भी हम माफी की उम्मीद रखते हैं, और दूसरे की एक भी गलती को हम चांस नहीं देना चाहते कि उसको माफ किया जाए. तो जब हमें माफी चाहिए तो क्या दूसरों को नहीं चाहिए? दूसरों को भी चाहिए. और जीवन के हर मोड़ पे क्षमा का महत्व है. आप कहीं चले जाओ, बचपन में भी एक छोटा बच्चा है, मान लो दिवाली के दिन अपने मामा के घर गया है, मामा के घर में उसने पटाखे चला रहा था, अचानक उन पटाखों के आतिशबाजी से वहां कुछ कपड़े सूखने डले थे, उनमें आग लग जाती है. बच्चा डर जाता है कि पता नहीं अब क्या होगा, लेकिन उसका मामा आता है, वो उसे कहता है, बच्चा डरो मत, गलती हमारी थी, हमने कपड़े बाहर रखे, तुम डरो मत. तो बच्चे को कितना अच्छा लगा होगा, और सारी उम्र उस मामा को याद रखेगा, और जीवन में किसी को सबको माफ करेगा. हम जवान हो जाते हैं, हमारे बच्चे हैं, किशोर अवस्था में हैं, उन्हें हम समझाएं, प्यार से गाइड करें. सजा देने से बच्चे बिगड़ जाते हैं. एक सच्ची घटना है, एक 15 साल का नौजवान, घर में कोई नहीं था, चोरी छिपे सिगरेट पी रहा था, जाड़े का मौसम था, गद्दे में और रजाई में आग लग गई. जब पिताजी को पता चला, बहुत गुस्सा आया और उसकी जमकर पिटाई की. उसको नाई के पास ले गए और उसके बाल मुंडवा दिए, कहीं कहीं से बाल रख दिए और कहीं कहीं से बाल कटवा दिए, और बच्चा कहीं बाहर जाए ना शर्म के मारे. इतनी शर्म उसे महसूस हुई, कितना उस बच्चे के दिल पे गुजरी होगी. और उसका रिजल्ट निकला कि वो बच्चा धीरे धीरे एग्रेसिव बन गया, धीरे धीरे बच्चा बिगड़ गया. कुछ टाइम के बाद उसने अपनी मां के सोने के कंगन चुरा के उनको बेच दिया. सजा देने से लोग सुधरते नहीं है, और ही जिद्दी हठी बिगड़ जाते हैं. मैरिड लाइफ में भी आज क्या है, क्यों नहीं, क्यों परिवार टूट रहे हैं? क्योंकि ना हम माफी करना जानते हैं, ना माफी मांगना, दोनों को भुला दिया है, सहनशीलता कम हो गई है, इसलिए परिवार भी टूटते जा रहे हैं. मान लो कोई व्यक्ति गलती करे और हमसे माफी मांगे, हमने उसे माफ कर दिया, उसने माफी ना भी मांगी तब भी माफ कर दिया, लेकिन वो व्यक्ति बार बार भूल करता रहे तब क्या करे? वो छोड़ता ही नहीं अपनी, तब क्या किया जाए बताइए? तब भी एक ही तरीका है, याद रखिए. हाँ, समझा दिया जाए और माफ कर दिया जाए, और प्यार से समझाओ. अगर वो मानता नहीं ना बात, ये ना सोचो उसकी कमी है, कमी हमारी है, हमारे समझाने में कमी है, हमारे प्यार में कमी है. हम इतना प्यार से समझाएं, इतना लॉजिकली समझाएं कि बच्चे को बात समझ आ जाए. प्यार में बहुत बड़ी ताकत है. हम माफ भी व्यक्ति को तभी कर पाते हैं जब हमारे पास बेहद का प्यार हो, अनलिमिटेड प्यार हो. बिना प्यार के ये दुनिया नहीं चलती. प्यार बहुत जरूरी है. नफरत की जगह हमें प्यार भरना पड़ेगा. अगर आपने किसी को मारना ही है तो देन किल अदर बाय योर काइंडनेस. आप इतने काइंड, इतने दयालु बन जाए कि वो व्यक्ति खुद ही मर जाए. दुनिया में लोग कहते हैं कि अगर कोई आपकी आंख फोड़ता है, आप उसकी आंख फोड़ दीजिए. आपका कोई दांत तोड़ता है, आप उसके दांत तोड़ दीजिए. टिट फॉर टैट, ये लोगों का नियम है. ईंट का जवाब पत्थर से दो, लेकिन समझदार व्यक्ति ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देता. वो फेंकी हुई ईंट को कैच करके उससे अपने लिए सुंदर सा आशियाना बना देता है. ये दुनिया के लोगों का नियम है, टिट फॉर टैट. लेकिन भगवान कहता है कि अगर आपने किसी से बदला ही लेना है, अगर आप किसी को मारना ही चाहते हैं, उसके ऊपर इतना दया करो, इतनी कृपा करो, इतना रहम करो, इतना उसे माफ करो कि वो खुद ही मर जाए. उसको खुद शर्म महसूस हो कि मैंने इसके साथ क्या किया और इसने फिर भी मेरे लिए कितना अच्छा किया. ये है प्यार. जीवन में प्यार बहुत जरूरी है. प्यार से जब हम भरपूर होंगे तभी दूसरे को माफ कर सकेंगे। अब एक बहुत सुंदर गीत बजेगा, आप सभी अपने अपने स्थान पे खड़े होंगे और मेरे साथ उस गीत को गुनगुनाएंगे कि दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी। प्यार आ जाए तो सब चीजें आ जाती हैं। सभी गीत गाते हुए ताली बजाते हुए गीत को एंजॉय करेंगे।
दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी,
दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी,
प्रेम की बोले बोलो, प्रेम की बोली बोलो, प्रेम से रहना सीखो जी,
दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी,
दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी।
प्यार के दो मीठे बोलों में तेरा क्या लुट जाता, प्यार का प्यासा सारा जग है, प्यार कर रखो नाता,
ओ प्यार के दो मीठे बोलों में तेरा क्या लुट जाता, प्यार का प्यासा सारा जग है, प्यार कर रखो नाता,
प्यार लुटाते सबको,
प्यार लुटाते सबका प्यार बनना सीखो जी,
दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी,
दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी,
प्रेम की बोली बोलो, प्रेम की बोली बोलो, प्रेम से रहना सीखो जी,
दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी, दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी, दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी, दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी।
कहते हैं माफ करना उन फूलों के समान है जो कुचले जाने पर भी खुशबू देना नहीं भूलते। आपने देखा होगा कि दुनिया में जितने भी जान और बेजान चीजें हैं उनके अपने गुण होते हैं, वो अपने गुण कभी नहीं छोड़ते। आप बर्फ को ले लीजिए, बर्फ क्या ठंडक देना छोड़ता है? कहीं पर भी बर्फ को हाथ में ले लीजिए, पिघल जाएगा, अपनी हस्ती मिटा देगा लेकिन देगा ठंडक ही। आप आग को ले लीजिए, आग हमेशा ही गर्मी देगी। आप गुलाब के फूल को ले लीजिए, उसे अपने सिर पे लगा लीजिए, अपने हार में लगा लीजिए, बुक्के में लगा लीजिए, मंदिर में चढ़ा के आ जाइए, पांव के नीचे कुचल दो, क्या गुलाब का फूल खुशबू देना छोड़ता है? छोड़ता है। उसी तरह इंसान के गुण क्या हैं? क्या इंसान अपने गुणों को छोड़ता है? असली इंसान जो होगा क्या वो अपने गुणों को छोड़ेगा? एक महात्मा नदी के किनारे नहा रहा था, एक बिच्छू ने उसे डंक मारा, महात्मा ने बिच्छू को पकड़ा और छोड़ दिया, दोबारा उस बिच्छू ने डंक मारा, महात्मा ने प्यार से पकड़ा, छोड़ दिया। चार पांच बार ऐसा हुआ। एक रास्ते में चलते हुए व्यक्ति ने कहा, महाराज ये बिच्छू बार बार डंक मार रहा है और आप इसे छोड़ देते हैं, इस दुष्ट को सजा देके मार क्यों नहीं देते? तो महात्मा ने कहा, ये जो बिच्छू है इसका गुण है, इसका धर्म है काटना, डंक मारना। जब ये अपना धर्म नहीं छोड़ता तो मैं महात्मा हूं, मेरा धर्म है माफ करना, मेरा धर्म है दया करना, तो मैं अपना गुण अपना धर्म क्यों छोड़ूं? हम ये भी याद रखें, हम इंसान हैं, हमें माफ करना है, तभी हम डिवाइन बनेंगे। और असली फ्रीडम फॉरगिवनेस में है। फॉरगिवनेस इज द की टू फ्रीडम, फॉरगिवनेस इज द की टू हैप्पीनेस। अगर आप मुक्त आकाश में बिना किसी बोझ के उड़ना चाहते हैं, माफ कर दीजिए, भूल जाइए उसे और उसके लिए अच्छा सोचना शुरू कीजिए। कभी भी किसी के लिए बुरा ना सोचिए, क्योंकि जब हम बदले के भाव मन में रखते हैं बहुत बुरे विचार मन में आने लगते हैं, क्योंकि अगर हम दूसरे का बुरा सोचेंगे सबसे पहले बुरा किसका होता है? हमारा। और दूसरे के लिए अच्छा सोचते हैं तो सबसे पहले अच्छा किसका होता है? हमारा। इसलिए किसी ने कहा, दूसरे को मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो, दूसरों को मिटाने की साजिश करने वालों को कह दो, चिंगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर आग लगाने का सपना एक दिन अपने ही घर खड़ा होता है। कभी भी किसी के लिए बुरी भावना ना रखो। उसने बुरा किया, उसकी करनी उसके साथ, मुझे अच्छा करना है तभी मैं फ्रीडम मुझे मिलेगी। जैसे क्षमा करना जरूरी है, क्षमा मांगना भी बड़ा जरूरी है। माफी मांगने से यह साबित नहीं होता कि हम गलत हैं और वो सही है। इसका सीधा सा मतलब है कि हम में रिश्ते निभाने की काबिलियत दूसरों से ज्यादा है। हम रिश्तों को प्रेफरेंस देते हैं, ना कि अपने ईगो को। और जैसे ही आप सॉरी कहते हैं, माफी मांगते हैं, तो दूसरे का जो गुस्सा है वो काफी हद तक दूर हो जाता है। इसलिए कभी भी सॉरी कहने में शर्म नहीं करनी चाहिए, किसी से माफी करने में अपने अहंकार को सामने नहीं लाना चाहिए। क्षमा याचना कर दो, जैनियों में बहुत महत्व है। साल में एक दिन वो दूसरों से माफी मांगते हैं, क्षमा याचना करते हैं कि किससे भूल हो गई उससे माफी मांग लो, दिल को हल्का कर लो। हर धर्म ग्रंथ में, हर धर्म में इसका वर्णन है कि अगर तुम माफ करोगे भगवान तुम्हें माफ करेगा। भगवान उन्हें उन पे दया करता है, उनको माफ करता है जो सब प्राणियों के ऊपर दया करते हैं, जो सबको माफ करते हैं। और ये क्षमा याचना विश्वास को पुनः स्थापित करने का एक बहुत बढ़िया तरीका है, क्योंकि जैसे ही हम कब गलती करते हैं तो उससे ये मैसेज आता है कि मैंने आपका विश्वास तोड़ा है। लेकिन हम क्षमा याचना करके दूसरे को ये बताते हैं कि जो विश्वास मेरी वजह से आपका टूटा है, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं उसके दोबारा टूटने नहीं दूंगा। एक बार गलती हो गई, बार बार रिपीट करके सॉरी कहना वो भी समझदारी नहीं है। जब भी माफी मांगे तो दिल से माफी मांगे, केवल बाहर। कहीं तो माफी भी बड़ी अक्कड़ से मांगते हैं, कहीं माफी मांगते माफी गलत माफी मांग ली ना, अब गलती की थी तो माफी मांग ली, जैसे उसके ऊपर एहसान कर रहे हो। नहीं, दिल से माफी मांगनी है। और गुस्सा जब आता है, बदले के भाव मन में आते हैं, याद रखो आंधी और गुस्सा दोनों बराबर हैं। शांत होने के बाद पता चलता है नुकसान कितना हुआ, इसलिए गुस्से के विचार भी मन से निकालने पड़ेंगे। बहुत सी बातें याद रखनी पड़ेंगी कि माफ करना है तो क्या क्या सोचना है। उम्मीद कभी नहीं हारनी है। मुश्किल वक्त का आपका सबसे बड़ा सहारा आपकी उम्मीद है, जो आपके कान में आके धीमे से कहती है सब अच्छा ही होगा, कुछ भी खराब नहीं होगा। क्यों डरें जिंदगी में कि बुरा होगा, क्यों सोचते रहें कि ऐसा होगा। कहते मंजिल की ओर बढ़ते रहें, अगर कुछ ना भी मिला तो तजर्बा तो नया होगा। और खुद की तरक्की में इतना टाइम लगा लो कि किसी की बुराई की तरफ ध्यान ही ना जाए, कौन क्या कर रहा है उसके पास टाइम ही ना जाए, और ये सोचने के बजाय कि उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, हम ये सोचें कि कभी ना कभी तो अच्छा करेगा जरूर। अच्छा, माफ करने की ताकत कहां से आएगी? क्या हम खुद माफ कर सकते हैं? माफ करने की ताकत आएगी जब उस परमात्मा से हमारा कनेक्शन जुटेगा। उसके लिए हम प्रेयर करते हैं, हे भगवान मुझे इतनी मन की शक्ति देना कि मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद जय करें। और तीसरी लाइन इंपॉर्टेंट कहते हैं, भेदभाव अपने दिल से साफ कर सकें, दूसरों से भूल हो तो माफ कर सकें। कहते हैं ना खुद ही, दूसरों को माफ करने की शक्ति ही उस परमात्मा से आती है। और उसके ऊपर अगर आपको विश्वास हो तो आप याद रखेंगे कि दुनिया में जब भी लोग आपको मुश्किल में डालेंगे, आपके ऊपर विश्वास हो कि मेरा रब हजारों रास्ते निकाल ही देगा। और भगवान जो करता है ऑलवेज रिमेंबर किसके लिए करता है, किसके लिए करता है, अच्छे के लिए ही करता है। अगर आपका भगवान से भी प्यार है और प्यार का सोर्स तो वही है, उससे शक्ति आएगी तभी दूसरों को माफ कर सकेंगे। तो वो भगवान से जुड़ना बहुत जरूरी है। हम याद रखें, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। भगवान जो कुछ हमें दे उसे खुशी खुशी स्वीकार करके आगे बढ़े। अगर हमारा प्यार है भगवान से और उससे शक्ति लेना चाहते हैं, जो कुछ वो हमें देता है सोचें उसमें ही हमारा भला है। अभी एक मिनट के लिए, दो मिनट के लिए दोबारा आप खड़े होंगे और एक सुंदर सा गीत बजेगा कि भगवान के फूल हमें भी, फूल भी मंजूर हैं तो कांटे भी मंजूर हैं। कभी खुशी खुशी इस गीत को महसूस भी करेंगे।
फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे देने करतार, दुनिया के तारनहार, दुनिया के तारनहार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे देने करतार, दुनिया के तारनहार, दुनिया के तारनहार। चाहे दुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, मालिक जैसे भी रखेगा वैसे रह लेंगे हम, मालिक रह लेंगे हम। चाहे हंसी भरा संसार, दिया आंसू की धार, जो भी देना चाहे दे सरकार, दुनिया के तारनहार, दुनिया के तारनहार।
इस गीत को भी आप याद रखें और बीच बीच में गुनगुनाएं, बहुत शक्ति ये गीत आपको देगा। और सेकंड वे जो मैंने बताया था पास्ट की बातों को भूलने का, मन को यहां से वहां लगाओ, डाइवर्ट योर अटेंशन। होता ये है कि जो चीज हमारे साथ होती है बार बार उसी का ख्याल मन में आता है, उस वक्त हम उस ख्याल से निकल के उसकी जगह अपना अटेंशन दूसरे की तरफ अगर डाइवर्ट कर दें, मन को इधर से हटा के दूसरी तरफ लगा लें, तो धीरे धीरे जो मेमोरीज हैं वो फेड पड़ने लगती हैं, पुरानी मेमोरीज, और उनकी जगह नई मेमोरीज आती हैं। ये जो मेडिटेशन आप सीखेंगे, अच्छी अच्छी कमेंट्री मेडिटेशन में आपको देते हैं, इसका भी यही बेनिफिट है कि वो नई स्मृतियां आपके मन में लाएगा, पुरानी स्मृतियां धूमिल होती जाएंगी और उनकी जगह नई स्मृतियां आती जाएंगी। तो ये डाइवर्ट करने का एक तरीका है अपने मन को। और सदा सोचो जो बीत गया वो कल्याणकारी था, भगवान ने जो किया अच्छा किया, उसमें कोई ना कोई कारण होगा, अब उसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। जो बीत गई सो बात गई, पास्ट इज पास्ट, उसके ऊपर फोकस ना करके हम आगे बढ़ें। दूसरों की बुराइयों के ऊपर ध्यान ना दें, बुराइयां जब हमारी वृत्ति ये होती है, ध्यान क्यों दूसरों की तरफ जाता है, जब हम दूसरों के अवगुणों को देखने लग जाते हैं, दूसरों की बातें हमें याद आने लगती हैं, दूसरों की बुराइयां मन में समा जाती हैं। इसलिए किसी ने कहा कि आप क्या बनना पसंद करेंगे, फॉल्ट फाइंडर बनना चाहेंगे या सॉल्यूशन सीकर बनना चाहेंगे, कमियां देखने वाले बनना चाहेंगे या कमियां भरने वाला बनना चाहेंगे, समाधान का अंग बनना चाहेंगे या समस्या का अंग बनना चाहेंगे। हम भगवान को कहते प्रभु जी मेरे अवगुण चित पर ना धरो, तो भगवान कहता मैं नहीं धरूंगा, पर तुम भी किसी के चित पे ना धरना। एक बड़ी अच्छी बात किसी ने कही कि दूसरे के ऐब को तू यूं ही बेनकाब ना कर, खुदा खुद हिसाब करेगा, तू हिसाब मत कर। बुरी नजर से ना देख ओ देखने वाले, मैं लाख बुरा सही तू अपनी नजर खराब मत कर। लास्ट में एक चीज हम और याद रखें, उससे पहले अगर किसी चीज को भूलना है और माफ करना है जो मन में कष्ट दे रही है, कर्म थ्योरी, कर्मों का हिसाब किताब, ये दुनिया कर्मों की एक दुनिया बनी हुई है, सबके साथ हमारे हिसाब किताब हैं। बहुतों को हमने दुख दिया है, बहुतों से दुख लिया है, वो पूर्व जन्म के हिसाब हमारे साथ हैं, कार्मिक अकाउंट हमारे साथ चल रहे हैं, अब उन्हें सेटल करना है, चुप्पू करना है। जो व्यक्ति आपको कष्ट देके गया, तंग करके गया, आपको अपमान करके गया, अब उसको चुकतू करने के लिए सोचो कि मेरा हिसाब किताब चुकतू हो गया, कार्मिक अकाउंट सेटल हो गया, जो कर्ज लिया था वो दे दिया, अब किस चीज की चिंता, अब मैं बोझ से फ्री हो गया। अगर इस थ्योरी को याद रखेंगे तो बहुत आसानी से हम दूसरे को माफ कर सकेंगे। जो व्यक्ति माफ करता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसे पता नहीं चलता कि वो दूसरे व्यक्ति ने गलती की है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पत्थर का बना है उसे कुछ फील ही नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं है कि जो व्यक्ति माफ कर रहा है उसे अपमान की महसूसता नहीं होती या समाज में उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। माफ करने का सीधा सा मतलब है कि उस व्यक्ति का एटीट्यूड है लेट गो, जाने दो, क्यों झंझट मोल लेना, मुझे मन की शांति चाहिए ना कि झगड़ा, मुझे मन को खुश रखना है, अपनी खुशी के लिए माफ करना है। तो ये संकल्प के साथ आज के लेक्चर को हम समाप्त करेंगे। मन ही मन आप अपने आप को कह दें कि आज से हम किसी से बदले की भावना नहीं रखेंगे, मन में अच्छे विचार लाएंगे, जिन्होंने हमें तंग किया, अन्याय किया, अत्याचार किया, उनके लिए भी क्षमा भाव धारण करेंगे, सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब अच्छे बने, सब हमारे अपने हैं, कोई पराया नहीं। क्या अपनों से बदला लिया जाता है? नहीं, मुझे माफ करना है, फॉरगिव एंड फॉरगेट, मुझे अपने मन को हल्का रखना है, मुझे माफ इसलिए करना है क्योंकि मैं मन को भारी नहीं कर सकता, मैं सदा दुखी नहीं रह सकता, मैं अपने रिश्तों को मधुर बनाना चाहता हूं, इसलिए मुझे माफ करना है। हे ईश्वर, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं दूसरों को उनकी भूलों के लिए माफ कर सकूं। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।